अध्याय पांचवा। भारत में विदेशियों की चिरपरिचित व्याधि दस्त ने मुझे पुनः धराशायी कर दिया। दुर्बलता, मतली और शौचालय के बार बार चक्कर लगाना मेरी दिनचर्या बन गए। अपने मित्र असीम की निस्वार्थ सेवा के बिना इन सब से गुजरना और अधिक कठिन हो जाता। वो अक्सर मेरी हिम्मत बंधाता। भक्ति का अर्थ प्रेम और निष्ठा से सेवा करना है। मैं जमीन पर लेटा रहता और असीम मेरे लिए उबले चावल, दही और इसबगोल की भूसी लेकर आता। जब भी वो आता, हम दोनों श्रीकृष्ण और वृंदावन के विषय में चर्चा करते। इस प्रकार मेरी बीमारी ने हमारी मित्रता को और अधिक सुदृढ़ कर दिया। मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन सुबह सुबह असीम ने मुझे वृंदावन के अंदरूनी गांवों में चलने के लिए आमंत्रित किया। उसने मुझे बताया कि वृंदावन के चारों ओर का क्षेत्र व्रज के नाम से जाना जाता है और यहीं श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। व्रज में 80 मील के वन, खेत और गांव हैं एवं 5,000 श्रीकृष्ण के मंदिर भी। कुछ भारत के विशालतम मंदिरों में से हैं और कुछ अत्यंत विलक्षण। तुम श्रीकृष्ण के प्रति व्रजवासियों के स्वाभाविक प्रेम से अभिभूत हो जाओगे। उसकी नीली आंखें उत्साह से फैल गईं। क्या हम चलें? कुछ मिनटों पश्चात हम एक चरमराती हुई जीर्ण शीर्ण बस में बैठकर धक्के खाते हुए जा रहे थे। चारों ओर सुनहरे गेहूं और हवा में लहलहाती पीली सरसों के खेत फैले थे। बीच बीच में सड़क के किनारे खड़े गरीब किसान बस को हाथ दिखाकर रुकवाते और चढ़ जाते। उनके कपड़े फटे थे। कईयों को मोतियाबिंद, चर्मरोग या ऐसे संक्रामक रोग थे जिनका इलाज नहीं किया गया था, किंतु वे प्रसन्न चित्त थे और भजन गाते और तालियां बजाते हुए बस में नाच उठते। बूढ़ी स्त्रियां, जिनकी काली एवं मोटी चमड़ी पर गहरी झुर्रियां थी, अनायास ही खड़ी हो जातीं। वे हाथ उठाकर नाचने लगतीं और बीच बीच में लजाकर अपनी फटी हुई साड़ियों से सिर ढक लेतीं। उनमें बच्चों की सी उमंग थी। गांव के व्रजवासी अद्यपि गरीब थे, वे प्रसन्नता से मुस्कुराते और जय राधे कहकर एक दूसरे को अभिवादन करते। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की करुणामयी संगिनी हैं। व्रजवासी श्री कृष्ण से परम सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं, अपितु अपने गांव के एक घनिष्ठ पड़ोसी के रूप में प्रेम करते। स्त्रियां कुएं से मटकों में पानी भरकर उन्हें अपने सिरों पर ले जाती हुई मुझे देखकर मुस्कुराती और राधे राधे कहती। उनके मिट्टी के चूल्हों से निकलती गोबर के उपलों के जलने की तीखी गंध हवा में व्याप्त थी। गांव के पुरुष महीने में एक बार अपने सिर मुंडवाकर अपने केश भगवान को अर्पित करते थे। उनका दिन गायें चराने, बैलों से खेत जोतने या अपने उत्पादों को सड़क के किनारे बेचने में व्यतीत होता। दुबले पतले बच्चे दमकती आंखों के साथ गेंद और डंडों के साथ खेलते हुए कूदते रहते। सभी स्त्रियां, पुरुष और बच्चे मुझे देखकर मुस्कुराते और राधे राधे कहकर पुकारते। मैंने सैकड़ों गांववासियों को मंदिरों में आते देखा। कुछ अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए दूध, माखन या मिठाइयां चढ़ाने के लिए लाते, कुछ प्रार्थना करते तो कुछ नाचते और गाते। इस अलग सी दुनिया में चलते हुए मैं विचार करने लगा, इन लोगों का धर्म केवल रविवार या किसी छुट्टी के दिन तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये इनके दैनिक जीवन के प्रत्येक पहलू में रचा बसा है। इनके लिए कितना सहज है ये सब। एक दोपहर असीम और मैं मदन मोहन मंदिर की पहाड़ी पर आराम करते हुए सामने बहती यमुना को देख रहे थे। काले भौंरे हमारे चारों ओर आकर मधुर गुंजन कर रहे थे। घास पर बैठकर मैंने अपनी टांगे फैलाई और लाल पत्थर से बनी दीवार की टेक ली। वहां मैंने असीम से अपने मन की बात उजागर की। असीम, मैंने पूछा, क्या तुम अर्चा विग्रहों की पूजा के विषय में अपने अनुभव बता सकते हो? मैंने उसे बताया कि कैसे भारत भर में अपने भ्रमण के दौरान मैंने लगभग सभी को भगवान की मूर्ति की पूजा करते पाया था। योगी और शैव शिवलिंग या शिवजी की मूर्ति की और बौद्ध लोग नाना वस्तुएं अर्पित करते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते। पश्चिमी धर्म के कई लोग बुत पूजा कहकर इसकी भर्त्सना करते हैं। मैंने कहा, किंतु ईसाई भी ईसा मसीह के चित्र या मूर्ति एवं पवित्र क्रॉस की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। मैंने उसे बताया कि कैसे जब मैं इटली में था तो मैं एसीसी में कॉन्वेंट ऑफ सेंट डेमियानो गया था, जहां वेदी पर लगे लकड़ी के क्रॉस से ईसा मसीह ने सेंट फ्रांसिस को उनके गिरिजाघर के जीर्णोद्धार के लिए कहा था। यहूदी भी सम्मानपूर्वक अपने धर्मग्रंथ टोरा को वस्तुएं चढ़ाते हैं, जबकि मूर्ति पूजा की निंदा करने वाले मुसलमान भी पवित्र मक्का में काबा को बार बार झुककर नमन करते हैं। मैं जानता था कि पूजा के इन विभिन्न रूपों की व्याख्या में मतभेद हैं, किंतु मैंने इन सभी में एक सामान्य विचारधारा पाई थी। वही थी अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ने के लिए किसी रूप या ध्वनि पर ध्यान एकाग्र करना। मैं जानना चाहता था कि श्री कृष्ण की पूजा के विषय में असीम के क्या विचार थे। उसी क्षण कृष्णदास बाबा जी घूमते हुए वहां पहुंचे और अपने परिचित अंदाज में उल्लास से हरे कृष्ण बोले। प्रसन्न हो हमने उन्हें प्रणाम किया और वे वहां से चले गए। यद्यपि ये प्रश्न मैंने पूछा था, असीम चुप रहकर मुझे स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचने का अवसर दे रहा था। मालूम है, मैंने कहना जारी रखा, जब मैं कृष्णदास बाबा जी जैसे भक्तों की अविश्वसनीय भक्ति देखता हूँ और जब वे विग्रहों की पूजा करते हैं, मैं उसे मात्र मूर्ति पूजा कहकर खारिज नहीं कर सकता। जब मैं ऐसे उच्च नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र वाले साधु को देखता हूँ, मैं उन लोगों को केवल मूर्ति उपासक कहकर नकार नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी आराधना में भगवत प्रेम का अनुभव करते हैं। क्या ईसा मसीह ने नहीं कहा कि तुम एक वृक्ष की पहचान उसके फलों से कर सकते हो? असीम बड़े भाई की तरह आश्वासन देते हुए मुस्कुराया। फिर आगे झुककर उसने कहा, हाँ कहते जाओ। मैंने बताया कि कैसे जब मैंने भारत में पहली बार अर्चा विग्रहों की पूजा देखी थी तो मैं थोड़ा विकर्षित हो गया था। ये मुझे अजीब और अंधविश्वास से भरी लगी, किंतु ऐसे संतों के साथ लंबा समय व्यतीत करने के उपरांत जो सहज ही अपने विग्रहों को भगवान के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का रूप मानते हैं, मैं भी विग्रहों की पूजा को सुंदर मानने लगा हूँ। अब मैं इसके पीछे आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? असीम तुलसी पौधों के निकट सीधा बैठ गया और गहन विचारों में अपनी ठोड़ी सहलाते हुए उत्तर देने से पूर्व एक क्षण के लिए रुका। वास्तव में ये सब बताने के मैं योग्य नहीं हूँ, किंतु मैंने अपने गुरु महाराज से जो सुना है और जो वैदिक ग्रंथों में पढ़ा है वो तुम्हें बता सकता हूँ। जिस प्रकार मधुमक्खी एक फूल से दूसरे पर मधु एकत्रित करने के लिए जाती है, मैं उसके शब्दों का रसास्वादन करने लगा। भगवान असीमित एवं स्वतंत्र हैं, असीम ने आरंभ किया। ऐसा कहना कि वे विग्रहों के रूप में प्रकट नहीं हो सकते, उन्हें सीमित करना होगा। वैदिक ग्रंथ भी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ऐतिहासिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी दोनों सभ्यताओं में ऐसी परंपराएं हुई जिनमें लोगों ने मनगढ़ंत मूर्तियों का निर्माण किया और अंधविश्वास से उन्हें पूजने लगे। उन्हें एक ही परमेश्वर के तत्व की कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। प्रायः उनके उद्देश्य स्वार्थी या शैतानी होते। इस प्रकार की मूर्ति पूजा की चिरकाल से भर्त्सना की गई है। बाइबल और कुरान के समय अंधश्रद्धालुओं में ये सामान्य रूप से पाई जाती है। वेदों में भी इस प्रकार की मूर्ति पूजा की संस्तुति नहीं की गई है। वेदों के अनुसार विग्रहों की प्रामाणिक आराधना एक विज्ञान है जिसमें भक्तिमय उपचारों के साथ एक विशिष्ट रूप में प्रकट होने के लिए भगवान का आह्वान किया जाता है। इन रूपों में वे भक्तिपूर्वक अर्पित हमारी भेंट स्वीकार करते हैं, केवल इस उद्देश्य से कि उपासक अपने शरीर मन और वाणी को उनके स्मरण में एकाग्र चित्त कर अपना शुद्धिकरण कर सकें। इस पद्धति का लक्ष्य भगवान को अपने समर्पण और प्रेम द्वारा प्रसन्न करना है। एक तितली जिसके पंख चमकीले बैंगनी लाल और पीले रंग के थे फड़फड़ाती हुई असीम की जंघा पर उतर आई। असीम बिना हिले उसकी सुंदरता को सराहने लगा। देखो, उसने कहा, उसकी वाणी प्रसन्नता से छलक रही थी। संपूर्ण सृष्टि की कला की एक चित्रशाला है जिसमें जहां जहां भी देखो प्रत्येक वस्तु एक श्रेष्ठ कृति है। मैं उन्हें बनाने वाले कलाकार से मिलने के लिए उत्कंठित हूँ। प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत होती है। सभी भौतिक तत्व भगवान की शक्ति हैं। अपनी इच्छा से वे चाहें तो हमारी सहायता करने के लिए स्वयं को विग्रह के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिससे हम अपने मन और इंद्रियों को उनकी प्रेम भरी सेवा में एकाग्र कर सकें। जिस प्रकार बिजली प्रकाश फैलाने के लिए बल्ब में प्रकट होती है, भगवान अपनी उपस्थिति को विग्रह में प्रकट करते हैं। बिजली को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब वो बल्ब में प्रवाहित होकर उसे प्रकाशित करती है तो केवल तभी हम बिजली को देख सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान भी एक विग्रह के रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं, जिससे हम उन्हें देख सकें और उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, मैंने जो कहा उसमें कुछ अर्थ लगा क्या? मैंने सिर हिलाया। मेरा हृदय शांति की भावना से भर गया। उस वर्ष मानसून की प्रचुर वर्षा के पश्चात वृंदावन घने वनों और गोचर भूमि से हरा भरा दिख रहा था। शरद ऋतु आ गई और दिन गर्म जबकि रातें ठंडी होने लगीं। मैं जहां भी जाता प्रत्येक व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की प्रतीक्षा में था। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यही वो रात थी जब भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रची थी। मैंने जाना कि कलाओं, काव्यों और नाटिकाओं में प्रचुरता से महिमान्वित रासलीला आध्यात्मिक प्रेम का गहनतम रहस्योद्घाटन है। मैं रोमांचित हो वृंदावन वासियों को उनके पवित्रतम उत्सव की तैयारी करते देखता। भक्ति पथ के अनुयायी भगवान के इस प्रेमोत्सव को सहज प्रेम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। पूरा वृंदावन चहचहा रहा था। बाजार भक्तों से पटे थे जो अपने अपने मंदिरों के लिए सजावट की वस्तुएं, अपने विग्रहों के लिए आभूषण और भोज के लिए खाद्य सामग्री खरीद रहे थे। इस रात्रि यहाँ स्थित सभी 5,000 मंदिरों में ये उत्सव मनाया जाता है। उस शाम सूर्यास्त से कुछ पहले आंगन में शिष्यों का एक समूह रास लीला का अर्थ सुनने के लिए बौन महाराज के चारों ओर एकत्रित हो गया। उन्होंने आरंभ किया। ये कोई सामान्य सांसारिक नृत्य नहीं है जहाँ लोग अपनी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। भले ही गोपियाँ गांव की साधारण स्त्रियों की भांति रहती हैं, वे भगवान के प्रति आत्मा के सच्चे प्रेम को, प्रेम के सर्वोच्च भावों को चरितार्थ करती हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना उनकी एकमात्र अभिलाषा है। ये नृत्य आत्मा और भगवान के बीच सर्वाधिक पूर्ण घनिष्ठता को दर्शाता है, जो किसी भी स्वार्थी इच्छा से मुक्त किंतु पूर्णतम आनंद से परिपूरित होता है। उस रात्रि जब श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी के मधुर गीतों द्वारा गोपियों को उनके घरों से बुलाया तो गोपियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया और अनेक संकटों एवं सामाजिक बहिष्कार का सामना करती हुई भगवान को प्रसन्न करने के लिए आई। जब वे परम भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुंची तो श्रीकृष्ण ने स्वीकार किया कि सृष्टि की संपूर्ण अवधि में भी वे गोपियों की शुद्ध भक्ति का ऋण नहीं चुका सकेंगे, किंतु उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्रीकृष्ण ने अपना विस्तार कर एक ही समय में प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। वो असीमित आनंद की रात्रि थी और प्रत्येक गोपी अपने आध्यात्मिक देह में थी। बौन महाराज ने अपना मुख डूबते सूर्य की ओर घुमाया और उनकी आंखें गुलाबी रंग से प्रकाशित हो उठीं। प्रवचन समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, कुछ ही मिनटों में हम ये उत्सव मनाएंगे, ये प्रार्थना करते हुए कि एक दिन हम भी गोपियों का अनुगमन कर सकें। बौन महाराज के मंदिर के तुलसी बगीचे में भक्तों ने दिन भर कड़ी मेहनत करते हुए हजारों छोटे छोटे सुगंधित फूलों को पिरोकर एक सिंहासन बनाया था। जब उत्सव मनाने का समय आया वे नृत्य कीर्तन करते हुए विग्रहों को वेदी से लाए और उन्हें सिंहासन पर विराजित कर दिया। फिर उनके सामने अनेक नमकीन एवं मीठे व्यंजन सजा दिए। रात को पूरब से पूर्ण और सुनहरे चंद्रमा का उदय हुआ। वृंदावन में रास पूर्णिमा के इस चंद्रमा को वर्ष का सर्वाधिक सुंदर चंद्रमा माना जाता है। भक्त उसके स्वागत में वे गीत गाते हैं जो विशेषतः इसी अवसर के लिए रचे गए हैं। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर चढ़ा उसके सुनहरे प्रकाश ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। इन सब के बीच कृष्णदास बाबा जी गहन भावनाओं के साथ गा रहे थे और अन्य भक्त आनंदपूर्वक उनका अनुगमन कर रहे थे। उन सबके साथ मैंने भी अपना मन वृंदावन के फूल बंगले में विराजित राधा और कृष्ण के मनोहारी रूप पर टिका दिया। चांद ने अपनी चांदनी को प्रत्येक फूल और पत्ते पर छिटका दी। धरती माँ मानो उसके स्पर्श से खिल उठी थी। मोती सदृश चांद की मधुरता में नहाकर सभी प्रसन्न चित्त थे। भगवान के विग्रह, पूरा वन और उनकी पूजा करने वाले हम सभी। इस प्रकार देर रात तक हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन किया। वृंदावन में बिताया गया समय बहुत गहराई से मेरे हृदय को प्रभावित कर रहा था। इन क्षणों की मधुरता में मैंने विचार किया कि भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम का अनुभव अतिमानवीय कार्य करने की शक्ति देने वाली योग सिद्धियों से कहीं श्रेष्ठ है। वो प्रेम उस मुक्ति से भी श्रेष्ठ है जो सभी कष्टों और चिंताओं का अंत कर देती है। गोपियों के समान आध्यात्मिक प्रेम में एक भक्त स्वयं को पूरी तरह भगवान के आनंद के लिए समर्पित कर देता है और पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम की घनिष्ठता का आस्वादन करता है। ऐसा ही एक अन्य चांदनी रात को जब रात्रि पक्षी मंदिर के उद्यान में गुनगुना रहे थे, अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बॉन महाराज मुझे गंभीरता से देखने लगे। मैंने तुम्हें बहुत ध्यान से देखा है रिचर्ड, वे रुके आने वाले शब्दों के लिए मुझे तैयार करते हुए। आज रात्रि मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूँ। उन्होंने तुलसी की एक जपमाला उठाई। मैंने तुम्हारे लिए इस पर जप किया है, क्या तुम स्वीकारने के लिए तैयार हो? पवन का ठंडा झोंका प्रांगण से दौड़ गया और मेरा मन कृतज्ञता और कष्ट के बीच झूलने लगा। ये मेरे लिए सम्मान की बात थी कि उन्होंने मुझसे पूछा, किंतु उन्हें निराश करने के विचार ने मुझे सिहरा दिया। मेरे अंदर दीक्षा स्वीकार करने का पर्याप्त दृढ़ विश्वास नहीं था। मैंने दुर्बल वाणी में उत्तर दिया, मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई और मुझे प्रेरणा दी, किंतु मैंने किसी भी गुरु से तब तक दीक्षा न लेने की प्रतिज्ञा ली है जब तक मुझे पूरा विश्वास न हो जाए कि मैं आजीवन उनके प्रति श्रद्धावान बना रहूँगा। मुझे लगता है यदि मैं आवश्यक निष्ठा के बिना आपसे दीक्षा लेता हूँ तो ये आप जैसे महान संत के प्रति अपमान होगा। बॉन महाराज की आंखें भर आई। मेरा सिर थपथपाते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी गंभीरता से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा, जो तुम्हारा हृदय कह रहा है वही करो। इस आश्रम के सदस्य तुम्हें एक आध्यात्मिक नाम से पुकारना चाहते हैं, यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हें एक नाम दूंगा। ये दीक्षा का नाम नहीं बल्कि स्नेह भरा एक संबोधन होगा। तुम इस नाम का प्रयोग तब तक कर सकते हो जब तक तुम दीक्षा स्वीकारने का निर्णय न लो। स्वीकृति में मैंने सिर हिला दिया। हम तुम्हें रथीन कृष्णदास बुलाएंगे। रथीन कृष्ण अर्थात अर्जुन का रथ चलाने वाले कृष्ण, और दास अर्थात तुम उनके सेवक हो। कृतज्ञता से मैंने अपना सिर झुका दिया। एक समस्या है, उनकी आंखें छोटी हो गई, सभी तुम्हारे लंबे बिखरे वालों की शिकायत कर रहे हैं। क्यों नहीं तुम आश्रम के अन्य निवासियों के समान अपना सिर मुंडवा लेते? मैंने याचना की। मेरे लिए सिर मुंडवाने का अर्थ गुरु के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जब तक मैं वो निर्णय नहीं लेता, बाह्य रूप से मैं ये कार्य नहीं करना चाहता, तो क्या तुम उन्हें थोड़ा छोटा काट सकते हो? हमारे अतिथियों को भी ये अच्छे नहीं लगते। यदि आप इससे प्रसन्न होंगे महाराज, तो मैं इन्हें अवश्य छोटा काट लूंगा। उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा अन्य सभी मुद्दों पर भारी पड़ी। उस रात्रि उत्सुकतावश मैंने दर्पण में देखा। लंबे अरसे से मैंने अपना प्रतिबिंब नहीं देखा था और न ही कंघे का प्रयोग किया था। आधी कमर तक लटके हुए मेरे बाल काफी जटाजूट हो चुके थे। अगले दिन प्रातः बॉन महाराज ने असीम को निर्देश दिया, हमारे रथीन कृष्ण को नाई के पास ले जाओ। असीम ने चुटकी ली और मुझे एक नाई की दुकान पर ले गया। नाई की दुकान लकड़ी की एक पुरानी झोपड़ी थी जिसमें मुश्किल से चार लोग बैठ सकते थे। जब मैं बाल कटवाने के लिए लकड़ी की भारी कुर्सी पर बैठा तो नाई मेरी जटाओं के गुच्छों को घूरने लगा। यह लगभग 50 वर्ष का दुबला और छोटे कद का व्यक्ति था। उसकी छाती खुली थी और उसने घुटनों तक लटके एक चैकदार कपड़े को कमर पर बांधा हुआ था। इन बालों को कैसे काटूं, वो बड़बड़ाया। उसने पूरा जोर लगाकर अपने पास रखी हर प्रकार की कैंची से प्रयास किया, किंतु उन्हें काटना तो दूर, कोई उन्हें भेद भी न पाए। अंततः उसने गली के अन्य नाइयों की एक खुली सभा बुलाई, कैसे इन बालों को काटा जाए। उन्होंने बार बार इसे दोहराया। अत्यंत विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने एक माली को बुलाने का निर्णय लिया। माली पहुंच गया, एक हट्टा कट्टा घनी काली मूंछों वाला व्यक्ति जिसने मिट्टी और पसीने के मिश्रण में लिसे ढीले सूती कपड़े पहने थे। उसने कुछ समय तक मेरे सिर का मुआयना किया और फिर उपयुक्त उपकरण लाने के लिए अपने गोदाम के लिए निकल पड़ा। लौटने पर उसके हाथों में जंग लगा एक बड़ा कैंचा था जिसका प्रयोग झाड़ियां काटने में होता है। मेरे बालों की कटाई एक विस्तृत परियोजना बन रही थी और वो माली उस परियोजना का स्वघोषित अगुआ था। अपनी गोल मटोल अंगुली से, जिसके अनकटे नाखूनों में मिट्टी भरी थी, संकेत करते हुए उसने आदेश देने शुरू किए। इसके बालों को पकड़कर पीछे की ओर खींचो, उसने अपने सहायक से कहा। जोर से और जोर से, हाँ, अभी जितना कसकर पकड़ सकते हो पकड़ो। एक राहगीर को पुकार कर बुलाते हुए उसने कहा, तुम इस साधु को कुर्सी पर दबा कर रखो और इसे हिलने मत देना। तब उसने नाई को आज्ञा दी, तुम कैंचे के निचले भाग को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर धक्का दो, मैं ऊपर से नीचे धक्का देता हूं। पूरी गंभीरता के साथ सभी अपना अपना महत्वपूर्ण मोर्चा संभाले लगे थे। माली और नाई पूरी शक्ति लगाते हुए आवाजें निकाल रहे थे और दोनों दिशाओं से कैंचे को अपने पूरे शरीर के वजन से दबाते हुए पसीने से लथपथ हो गए। अनेक राहगीर रुक कर तमाशा देखने लगे। कुछ लोग तो इस परियोजना में ही आ जुटे। हर कोई अपना जोर लगाकर कैंचे को दबा रहा था। इस एक कट का जो भी परिणाम होगा, वही मेरी नई केश शैली होगी। दूसरे कट का प्रश्न ही नहीं था। जत्थे में सभी आहें भरते मेरे बालों को भेदने के संघर्ष में पसीने पसीने हो गए। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि ब्लेड मेरी जटाओं को चबा रहे थे और मेरी खोपड़ी से सैकड़ों बाल खींच भी रहे थे। इस पूरे प्रकरण के दौरान असीम इतनी जोर से हंस रहा था कि आंसुओं की धारा उसके गालों से होकर बहने लगी। अंततः कुछ लंबे मिनटों की खींचा तानी के पश्चात झाड़ियां काटने वाले उस कैंचे के दोनों ब्लेड आपस में टकराए, काम हो गया था। भूमि पर कचरे के समान मेरे बहुमूल्य बाल छितरे पड़े थे। एक समय मेरे यही बाल मेरे आदर्शों तथा युद्ध, भेदभाव एवं समाज में आडंबर के प्रति मेरे विद्रोह के प्रतीक थे। अभी नाई बिना विचार किए अपनी चप्पलों तले उन्हें रौंद रहा था। मेरे सिर पर अब केवल गर्दन तक लटके बाल ही बचे थे। आधुनिक इतिहास में शायद यह सबसे भद्दा हेयरकट था, किंतु जो होना था वो हो चुका था। माली और नाई ने गर्व से दर्पण उठाया, काम हो गया, देखो देखो। अपनी हथेलियों को जोड़ मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, किंतु मैंने नहीं देखना ही उचित समझा। वापस आश्रम लौटने पर हमने वहां दो अमरीकी देखे। एक डेविड था, बहुत गंभीर और बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने हाल ही में प्रसिद्ध लेखक एलन वॉट्स के सचिव और मित्र के रूप में कार्य किया था। एलन वॉट्स की पुस्तकें पूरब के रहस्यवाद को पश्चिम के तर्कशास्त्र से मिलाकर प्रस्तुत करती थी। डेविड और मैं तुरंत ही घनिष्ठ मित्र बन गए और अनेक घंटों हम एक दूसरे से हृदय की गहन बातें करते। असीम के समान डेविड भी हृदय से बोलता और सामने वाले को बहुत ध्यान से सुनता भी था। एक दिन पूर्वी बंगाल से बौन महाराज के 5 प्रमुख शिष्य वहां आए। उनके प्रमुख जगन्नाथ जी एक विद्यालय के प्राध्यापक और कस्बे के मुखिया भी थे। उनका कद ऊंचा था, पहनावा साफ सुथरा और चाल आत्मविश्वास से भरी थी, किंतु फिर भी वे नम्र और सभी का सम्मान करते थे। यद्यपि वे मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के थे, फिर भी हम नजदीकी मित्र बन गए। एक दिन प्रातः जगन्नाथ और उनके साथियों ने डेविड के हाथ में कैमरा देखा। सर, कृपया हमारा एक सामूहिक चित्र लीजिए ना, एक ने कहा, और वे सभी मंदिर के समक्ष मुद्रा में खड़े हो गए। डेविड मेरी ओर मुड़ा और फुसफुसाया, मेरे कैमरे में ये मेरा अंतिम रोल है, अब केवल एक ही फोटो खींची जा सकती है। मैंने इसे किसी विशेष फोटो के लिए बचा कर रखा है, क्या करूं मैं, ये सब तो तैयार खड़े हो गए। हमने निर्णय किया कि हम फोटो लेने का अभिनय करेंगे और केवल क्लिक की आवाज़ कर देंगे। तब अपनी इस चाल पर अधिक विचार किए बिना हमने फोटो खींचने का नाटक किया और चले गए। अगले दिन मैं जगन्नाथ को एकांत में चुपचाप रोते देख हतप्रभ रह गया। क्यों वे इतने दुखी हैं, मैंने उनके मित्र से पूछा। उन्होंने जलाकर राख कर देने वाली निगाहों से मुझे घूरा। तुमने जो किया उसके कारण, मैंने ऐसा क्या किया, भौचक्के होकर मैंने पूछा। कल तुमने हमारी फोटो लेने का नाटक किया, यह कपट है, हमारा अपमान करने के लिए तुम पर धिक्कार है। भागकर मैं जगन्नाथ के पास गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा, किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैं पुनः उनके पास गया और अपनी मूर्खता के लिए क्षमा करने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक भरी दृष्टि से टकटकी लगाकर मेरी आंखों में देखा। तुम श्रीकृष्ण के भक्त हो, उन्होंने कहा। कैसे तुम किसी अन्य मनुष्य के साथ इतने अनादर से व्यवहार कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें तृण से भी अधिक नम्र बनना और सभी का संपूर्ण सम्मान करना सिखाया है? कपट एक भयंकर रोग है। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें भक्त समझकर तुम पर विश्वास किया, किंतु तुमने मेरी अपेक्षाओं को धूल में मिला दिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे मित्र, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ क्योंकि तुम कितना कम जानते हो। एक सच्चा भक्त कभी किसी के साथ इतना हीन व्यवहार नहीं करेगा। तब उन्होंने मेरा आलिंगन किया और चले गए। लज्जित होकर मैं नदी के तट की ओर चला गया और इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करने लगा। मैंने विचार किया, सामान्य समाज में इतने छोटे उल्लंघन पर मुश्किल से कोई ध्यान देता है, किंतु भक्ति की संस्कृति में हृदय की कोमलता और निश्चलता को पवित्र स्थान दिया जाता है। यही भक्ति की संस्कृति वास्तव में क्या है? ये बहुत सूक्ष्म है। ये हृदय रूपी खेत को उपजाऊ बनाती है, जिससे सच्चे प्रेम का बीज उसमें उग सके। असीम कृष्णदास बाबा जी और बौन महाराज के मधुर संग में 2 महीने बीत गए। बौन महाराज ने फिर कभी मुझे दीक्षा लेने के लिए बल नहीं दिया, किंतु आश्रम में एक साधु थे जो ये सहन नहीं कर पाया कि मैंने दीक्षा अस्वीकार कर दी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और चेहरे पर घृणा भरे भाव लिए आंधी तूफान के समान बरस पड़े। अपने आप को देखो, उन्होंने फटकारा, तुमने साधु बनने के लिए भौतिक जीवन का त्याग किया, किंतु जब तक तुम एक गुरु से दीक्षा नहीं लेते तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक नहीं बन सकता। उसकी आंखें भींच गई और आवाज कांपने लगी, क्या तुम जानते हो जो व्यक्ति भौतिक या आध्यात्मिक जीवन के बिना मर जाता है उसका क्या होता है? निःशब्द मैं उन्हें देख रहा था। जानते हो तुम? नहीं, दबते हुए मैंने उत्तर दिया। वे अपने स्थान से उठ खड़े हुए और मेरे चेहरे की ओर अंगुली उठाते हुए बोले, वो भूत बन जाता है, भूत। मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। तुम एक भूत के समान रह रहे हो। यदि अनपेक्षित मृत्यु आती है तो तुम एक भूत बनकर घूमते हुए हजारों वर्षों तक भयंकर दुख भोगोगे। उन्होंने मुझे घूरा, क्यों तुम हमारे गुरुजी की कृपा को इतना मामूली मान रहे हो? या तो तुम समर्पण करो या चले जाओ। दुखी हो मैं नीचे देखने लगा और बोला, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। उनके दरवाजे से निकलकर मैंने अपने कपड़े का थैला एवं भिक्षा पात्र उठाया और आश्रम से जाने लगा। जाते समय मुझे आंगन में बैठे बौन महाराज दिखाई दिए। मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वहां से जाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। जब उन्होंने ये सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? महाराज, मैं आपके प्रति अपराध नहीं करना चाहता। संक्षेप में मैंने उन्हें वो प्रवचन सुना दिया जो मैंने अभी अभी सुना था। उनके चेहरे पर घिन्न उभर आई। किसने कही तुमसे ये बेहुदा बातें? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें बता दिया। तब एक पिता की प्रेम भरी कोमलता से उन्होंने कहा, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। तुम एक खरे भक्त हो। मैं तुम्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करता हूँ। तुमने कभी मेरा अपमान नहीं किया, अपितु तुमने सदैव मुझे आनंद दिया है। जब तक तुम चाहो यहाँ रहने के लिए तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि फिर तुम पर कभी ऐसा दबाव नहीं आएगा। मैं बौन महाराज की दया का कृतज्ञ था। फिर भी इस वृत्तांत पर ध्यान देते हुए मैं समझ गया कि अब वहां से जाने का समय आ चुका था। मैं उनके शिष्यों को उद्विग्न नहीं करना चाहता था। मेरा मार्ग अभी तक स्पष्ट नहीं था, जबकि दूसरी ओर आश्रम में निवास केवल समर्पित शिष्यों के लिए ही था। बौन महाराज ने उनके द्वारा दिए गए स्नेह ज्ञान का सम्मान करते हुए मैं कुछ दिन और वहां ठहर गया। फिर उनका आशीर्वाद लेकर मैंने वृंदावन के वनों के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पे 5वां अध्याय समाप्त होता है।